نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بك ونتوكل عليك. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مادن الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه الفم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث روایت ہے، مسلم نے اس روایت کی ہے. اس حدیث کا مفہوم ایسے ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ خبر دی کہ جو انسان ہے اس کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں. انسان جو ہے، ہم بیٹھے ہیں، مرد یا عورت، اس کے اندر جو ہے 360 جوڑ ہیں، جوائنٹس. اور یہ جوڑوں پر زندگی ہماری، یعنی موومنٹ ساری، جس کو کہہ لیں اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظام کیا ہے پورے جسم میں کہ سارے جسم کی جو موومنٹ ہوتی ہے، انگلیوں کی، ٹانگوں کی، ہاتھ کی، پیر کی، چلنے کی، گردن کی، اللہ تعالیٰ نے یہ سارا انتظام ایسا کیا ہے جوائنٹس کو. تو آج کی یہ خبر نہیں ہے سائنس کی کہ وہ اسکین کیا ہے یا کوئی ایم آئی آر میں ڈالا ہے اس کو، یا کوئی ایکس رے کیا ہے، یا کسی مشین سے دیکھا ہے. یہ سادی کے مستوق صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے. آج کا اسکین غلط ہو سکتا ہے، لیکن جو خبر پیارے حبیب نے بتائی وہ غلط نہیں ہو سکتی. تو آپ نے فرمایا کہ 360 جوڑ ہیں، اور ان جوڑوں پر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں حفاظت ضروری ہے. ظاہر ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے مشین گھستی، انسان بڑا ہوتا جاتا ہے، تو اثر اس کے کوئی گھٹنوں پہ پڑتا ہے، کبھی ٹخنوں پہ پڑتا ہے، کبھی ہاتھ پہ پڑتا ہے، کبھی کونیوں میں پڑتا ہے. پرابلم تو ہے نا کتنا بڑا. تو پھر جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، جاتے ہیں پین کلر کھا رہے ہیں. تو ایک بہت بڑا افیکٹ ہے انسان کی زندگی میں. اور کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی انسانیت پر. مذہب یہ نہیں کہ صرف عبادت ہی سکھاتا ہے، بلکہ انسان کی پوری حفاظت کرتا ہے. غور سے اگر دیکھیں اپنے مذہب کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات کو دیکھیں، تو اپنی پوری حفاظت نظر آتی ہے انسان کو ہر چیز کی. تب اس حدیث پہ آپ غور کریں کہ پہلے تو انفارمیشن دی، خبر دی کہ 360 جوڑ ہیں جو کام کرتے ہیں آپ جسم میں. اور ظاہر سی بھی ہماری چلنا پھرنا، اٹھنا سونا، اور مین چیز جو عبادت بھی اسی پہ ہے. آدمی بیچارہ عبادت سے رہ جاتا ہے، عجیب عجیب بیماری ہوتی ہے نا جی، اس کی جو جوڑ جینٹس کی ہوتی ہے، ڈپارٹمنٹ ہے باقاعدہ، اس کا علاج ہوتا ہے اس کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا علاج میں بتا دیتا ہوں. سبحان اللہ، اس کے علاج اللہ کے نبی ارشاد فرما دیا. کیا فرمایا؟ کہ بھائی تم اس طرح کرو، یہ 360 جو ہیں اس کا تو صدقہ نکال دیا کرو. کیا نکالنا ہے؟ مشین چلتی رہے گی اللہ کے فضل سے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جس کا یقین ہو اس پہ اور وہ اس پہ، اس پر کام نہ بنے انسان کا. तो कितनी बड़ी बीमारी से इंसान को निजात मिल जाती है, आप ये देखें कितनी बड़ी आफत से, कितनी बड़ी गोलियों से निजात मिल जाती है। एक इलाज बताया सदका, सदका कर दो रोजाना, तो 360 जो जोड़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको चलते रहेंगे, रुक नहीं सकते, फिर बीमारी नहीं आ सकती उसमें। और भी आसान कर दिया, स्त्री के आसान कर दिया कि भई ये अब सदका तो वही दे सकता है जो अमीर है, या एक और भी जो बखील है बेचारा वो वैसे नहीं देता, अमीर और बखील हो फिर भी पैसा नहीं निकलता उसको, तो गरीब बेचारा क्या करे। जैसे कोई गरीब मुल्क में बेचारा उसने कमाने 10 रुपये सारे दिन में, तो वो सदका कहाँ से निकाले, बच्चों को खिलाए, आदमी सुस्ती कर जाता है। मजहब का हमारा अंदाज ये है कि स्टार्ट ही वो नीचे से होता है, सबसे नीचे चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से शुरू करते हैं काम, कि वो भी इस सवाब में इस काम में शामिल हो जाए। तो आपने सदका बताया कि भाई सदका दो, और सदके के साथ भी एक आसान तरीका होता है, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता कि उसमें औरत हो, बच्चा हो, मर्द हो, बूढ़ा हो, जवान हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी उस सदके को निकाल सकते हैं बड़े आराम के साथ। बिल्कुल, बल्कि उलमा कराम ने ये कहा है कि सदका निकालना इंसान पर वाजिब है, कितना जरूरी है देखें, इसमें प्रोटेक्शन है इंसान की, सस्ते है कि इबादत की प्रोटेक्शन मिलती है इंसान को। तो भाई अल्लाह के ने समझाया कि चलो ऐसा तरीका बताते हैं कि जिसमें हर आदमी शामिल हो जाए, गरीब भी अमीर भी, सदके के एक अंदाज अल्लाह के नबी ने समझाया। कहता चला इसका सदका मैं बता देता हूँ तुम्हें कैसे करना है, हर आदमी कर सके जी कैसे करना है। साहिश सदीका फरमाते हैं कि हर आदमी जो है सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र ये कर लिया करे, तो इंशाअल्लाह ये सदका उसका अदा हो जाएगा अल्लाह का। इससे आगे जो अल्लाह फरमाया अल्लाह के नबी सुना, वो तो सुनने वाली चीज़ है। देखें फरमाते हैं कि जब इसने सदका अदा कर दिया, 360 दफ़ा पढ़ लिया, हर जोड़ पे एक सदका निकल गया, उसका तादाद को पूरा कर दिया, तो फरमाया जब वो दिन में चलता फिरता होगा तो किसी शख्स को अगर देखना हो, जो दोज़िख की आग से आज़ाद हो गया, तो उसको देख लो। यानी जो ये पढ़ेगा अल्लाह का ये जिक्र करेगा, तो उसके बाद सुबह वो ना सिर्फ ये कि उसकी जिस्म के जो अज्ज़ा हैं वो सही हो जाएंगे, बल्कि वो दोज़ख की आग से भी आज़ाद हो जाएंगे, दोज़ख से भी बच जाएंगे। तो कितनी बड़ी इसमें आप ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी मिलती है इंसान को आप, कि ना सिर्फ ये है कि अल्लाह का जिक्र जो है कितनी बड़ी चीज़ है, आप गौर करें, सिर्फ ये नहीं कि दुनिया ही से उसके फ़ायदा हो, बल्कि अल्लाह का जिक्र ऐसा है कि उसके साथ साथ क्या है आखरत में अल्लाह ताला कितना सवाब अता फरमा देते हैं। अल्लाह ज़िक्रुल्लाह अकबर दोस्तों, तो अल्लाह का जिक्र जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इंसान ये सुबह अल्लाह के जिक्र की पाबंदी कर ले और आदत डाल ले कि बैठ के मैंने अल्लाह का जिक्र करना है, और जिक्र करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दिन जो है इस हदीस के मुताबिक अल्लाह के फजल से वो इंसान ना सिर्फ सेहतमंद होगा, बल्कि क्या होगा साथ में घंटी है कि वो दोजक के आग से बच निजात होगी इसकी। अगर उस दिन उसकी इंतकाल हो जाता है तो गारंटी पहले ही आ रही है अल्लाह के फजल से, कितने बड़े अजाब से इंसान बच जाता है। तो इसमें सुस्ती क्यों करे आदमी, मुझे पता है सुस्ती की वजह समझ आती है कि हम सुस्ती करते हैं। अब हदीस सुन ली है, पहुँच भी गई है, अथेंटिक हदीस है, मुस्लिम की रवायत है, आयशा सिद्दीक रवायत कर रहे हैं, और उलमा कराम के इस पर तबसरे हैं, जुरान दीन में से बातें की हैं, तब कुछ शक इसमें क्या है, क्यों नहीं हम करते फिर भी, और फ़ायदा किसका है, हमारा ही है, ज़िंदगी भी सही मिल रही है। वो पसंद करते हैं कि डॉक्टरों के पास जाकर तो गोली खाते फिरें, लेकिन क्या ये पसंद नहीं करते कि सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़ के आदमी अल्लाह का जिक्र कर ले थोड़ी देर, कितनी बड़ी बात है। तो उसकी बात समझ में आती है कि हम जो ये काम नहीं करते, सुन लेते हैं, सुनने के आदि हैं, शौक भी सुनने गया, चस्का भी पड़ गया, मज़ा भी आता है, फिर फला जगह बड़ी तकरीर हो रही है, बड़े शौक से जाएंगे, तकरीर के बाद हो क्या रहा है ये पता नहीं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं माशाल्लाह, नसीहत फरमाएंगे, जमा हो गए, नसीहत फरमाई, हाल नहीं बदला, तो कितने अफसोस की बात है। आए इसलिए शौक लेके आया, अल्लाह ताला ने वहाँ भेजा, बातें सुनाई, एक चीज़ पहुँच गई हमारे तक, तो हमें क्या चाहिए, उस पर अमल में लाएं ज़िंदगी में, इसीलिए तो हम आए सुनने के लिए। पीछे से आपको कोई ऐलान करे कि भाई फलां जगह पर इतने पैसे तकसीम हो रहे हैं और हम वहाँ पर जाएँ और पैसे ना मिले, बिल्कुल घुसाएगा इंसान, ये हम क्यों गए, हमें फ़ायदे कुछ। तो इतनी जगह पर आप ऐलान किए जा रहे हैं, इश्तहार दिए जा रहे हैं, भाई फ़लाँ आदमी आएंगे, फ़लाँ बुजुर्ग आएंगे, वो आपको ये बातें सुनाएंगे, ऐसे होगा, जैसे अभी वो ऐलान की अल्लाह के जिक्र की मजलिस है, तो लेकिन आदमी बस सुनता है उसके बाद फिर वैसे के वैसे, तो फ़ायदा क्या उसको वहाँ पर आने का, बैठने का, सुनने का, मुझे बताएं। वजह इसकी क्या है, जैसे अब इतनी बड़ी हदीस, छोटी सी हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कितनी इंसान की ज़िंदगी बनती है, आप ये देखें, आखिर तक दुनिया दोनों संवरती है इस चीज़ से। तो चाहिए तो ये हदीस सुनने के बाद हम भी सुने, लोगों बताए, यार ये तो कमाल हो गया, इतनी बड़ी रवायत आ गई हमारे पास, ये सावाग्राम का अंदाज था, यार इतनी बड़ी चीज़ आ गई अल्लाह के फजल से, सुभान अल्लाह, एक दूसरे को बताते फिर रहे हैं, और जो मरीज हैं उनको भी बताया जा रहा है, तो क्या हो, चलो भी चलो अल्लाह का जिक्र हो रहा है, चलो बैठे सुबह थोड़ी देर बैठ जाते हैं आधा घंटा, अल्हम्दुलिल्लाह कितना फ़ायदा होगा। ये नहीं करना, बस ये करना कि जा किसी बुजुर्ग के पास जाकर जी तावीज़ तो दे दें, जी फलां फलां मसला हल है हमारा, हल हो जाए, कैसी कैसी चीज़ें इनायत फरमाई हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताएं आप, कितना कितना कितने आसान और कितने ज़बरदस्त अमल हैं ये, बताएं। मौत तक तो इंसान ने पहुँचना ही है, लेकिन कितनी हम ज़ाय करते हैं चीज़, वजह इसकी क्या है, इसके ज़रूर कोई वजह है पीछे, ना आदमी को पागल तो नहीं है, हर चीज़ सेंस है, हमारे दुनिया के हर मामले को समझते हैं, हर नफ़ा नुकसान को हम समझते हैं, लेकिन ये फ़ायदा हमें नफ़ा समझ क्यों नहीं आता, इसके तक क्यों नहीं दौड़ते, इसकी वजह क्या है कि ये तो हालांकि वो फ़ायदा है कि जिसका इंसान को अंदाजा ही नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता, आखिर इसकी वजह क्या है, वजह एक ही समझ आती है, अब वो ये है कि हमारे यकीन नहीं है, ताकि बताऊँगा, कहते तो हाँ हमें यकीन है, लेकिन यकीन कैसे होता है, दिल से होता है, इंसान दिल पे इतने गलाफ चढ़ गए हैं ना हमारे, गफलतों के, गुनाहों के और नाफरमानियों के, जैसे हदीस के अंदर ना कि इंसान एक गुनाह करता है तो वो समझता है कि गुनाह को असर नहीं हो रहा, यह हदीस है, ये भी सुन लें नबी, ये अल्फाज हैं, एक आप बाहर जा रहे हैं, एक गंदा डस्ट उड़ता है काला, आपके सफेद कपड़े हैं, इस पर पड़ेगा असर करेगा ये नहीं करेगा, बताएं आप जा रहे हैं, एक छींटा पड़ता है कीचड़ का, आपके सफ़ेद कपड़े हैं, वो छींटा उसे पड़ता है, असर करेगा या नहीं करेगा, जब तक आप धोएंगे नहीं उतरेगा या नहीं उतरेगा, उतर जाएगा, और सफ़ेद कपड़े दूर से नजर आएगा या नजर आएगा, छींटा इसमें पड़ा हुआ है, नजर आते हैं ना से? तो इसी तरह गुनाह, जब गुनाह इंसान करता है तो वो कहाँ चिपक जाता है जाके, अल्लाह ने उसको बताया कि वो जाके सीधा दिल पर चिपक जाता है, दिल के ऊपर चिपक जाता है, अब आपने उसको नहीं हटाया, रिमूव नहीं किया दिल से, तो वो क्या फैलना शुरू होता है, फिर एक और गुनाह फैलता है फैलता है, हदीस के लफ्ज़ हैं कि फिर वो दिल जो है इंसान का काला कोयले की तरह हो जाता है। अब जब दिल ऐसा हो गया इंसान का तो फिर क्या है, आप ये बातें समझाए दें, बताया जाए उनको, सुमन बुपन बुम लाई हो जी, बस कान बंद करेंगे, साथ से निकल जाए, यहाँ जिक्र हो रहा है, यहाँ से जा रहे हैं साथ से, सुबह हदीस सुनिए, अभी हदीस सुनिए, अभी जिक्र हो रहा है, अभी सांस से निकल जाएंगे, ये क्या बात है, हमने समझा कुछ नहीं, हालांकि ईमान का तकाजा, यकीन का तकाजा ये है कि ये चीज़ हमें तो चाहिए, क्या हमें नहीं चाहिए कि दोजख की आग से हम बरी हो जाएं, चाहिए नहीं चाहिए, हर आदमी चाहता है दोजख की आग से हम बच जाएं, क्या हम ये नहीं चाहते कि हमारे सेहतमंद हों और आराम के साथ हम बैठ के नमाजों को अदा करें, घर से चलते हुए हैं बैठें और नमाज को अदा करें, हमारे जिसम के सब अज्जा सही हो, किसी चीज़ में हमारे दर्द ना हो, चाहता है सब आदमी चाहता है, जो नुस्खा जो मड़ा है कि सुबह उठ के अल्लाह का जिक्र कर लो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तो बोले जोर से, सो गए, देखिए ये क्या वजह है, ये वजह ये है कि ऊपर से बहुत साफ सुथरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तीन तीन दफा सोप लगाएंगे, पता नहीं कौन कौन से नाम है सोप, साबुनों के भी फलां सोप, ये खुशबू वाला, ये फलां, और शैम्पू डालेंगे और पता नहीं क्या पैसे खर्च करते हैं, खूब सजाएंगे, अल्लाह के बंदो दिल को तो सजा लो, दिल की सजावट पता चल जाएगी उस वक्त के, जहां इतनी सी बात सुनी और हवाला किसका आ रहा है, सुभान अल्लाह, बात सुनी और हवाला पीछे किसका है, नामे नामी किसका है, नबी आख़िज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आदमी तो वहीं जम जाए, मीक की तरह जम जाए, खत्म, मामला खत्म हो गया। मुझे पक्का यकीन है कितने हवादिस आ जाए, कितनी कुछ भी हालात में हो जाए, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमा दिया अगर तूने ये किया तो ये हो जाएगा, मैं ये कर लिया खत्म, बस मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैंने कुछ नहीं हो सकता, ये यकीन हमें चाहिए। और यकीन कहां से आएगा, जब दिल को हम अपने इस गंद से निकालेंगे, जब दिल साफ हो जाएगा, उससे खिलाफ खत्म हो जाएंगे, उसको धो लिया जाएगा, दिल इतना चमक जाएगा कि जहां भी इतना सा इशारा मिल जाए कि हदीस में ये लफ्ज आए, सुभान अल्लाह, आदमी वहीं खड़ा हो जाता है, बस ये खत्म, मामले खत्म। इससे बड़ी कोई हस्ती ही नहीं जो हमें कोई चीज बता सकती हो, दुनिया की या आखिरत की, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो आप इंसाइक्लोपीडिया को देखें, या आप बुक्स खोलें, रेफरेंसेस देखें, होते हैं ना ऐसा, डिक्शनरी खोलते हैं देखने के लिए ऑथेंटिक बात है या नहीं, ये किधर से निकल रही है बात, ये मसला कहां से निकल रहा है, ये किस तरह हो रहा है, होता है ना ऐसा। तो यहां क्या है ईमान का तकाजा कि किसी बात का भी रेफरेंस हमें कहां से मिल रहा है, सादिक के मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान में मार्ग से पहुंच रहा है हमारे तक, इसलिए तो चीजें आई हैं, इसलिए तो जमा की गई, इसलिए तो हदीसें बनी हैं सब, कि वो पहुंच रहा है और रेफरेंस वहां से मिल रहा है, कि सही खत्म, ईद हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, मजे हो गए, सवाल ही पैदा होता है इसमें कुछ चीज हो, लेकिन इसके लिए चाहिए क्या है, यकीन चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह तो हम कहते हैं, लेकिन इस यकीन हमारा कितना, इसको सोचे तो मेरे भाई, दिल की तरफ हमें गौर इसी से कर लें कि यार तो बात समझ में नहीं आ रही, इस पर इतनी खुशी नहीं हो रही, अल्लाह के नबी ने चीजें बताई हैं, इतनी बड़ी चीज है अल्लाह का जिक्र, कितनी बड़ी चीज है, थोड़ी देर करो 360 अज्जा रिफ्रेश हो जाते हैं, और जब तू दिन में गुजरता है तो अल्लाह के नबी इस लफ्ज से, इस लफ्ज से खुशखबरी दे रहे हैं, ये दोज़ख की आग से इसने बचा लिया अपने आप, अल्लाह किया क्या है आपने, मुझे बताएं क्या इतना तीर मार दिया, सब बैठ गया आपने, कुछ देर अल्लाह को याद किया है, कुछ जेब से आपके पैसा खर्च नहीं हुआ, कोई माल खर्च नहीं हुआ, कुछ आपने इतनी कीमती चीज कुछ नहीं दी, अल्लाह के बंदे किया क्या है, सिर्फ एक चीज है कि यकीन के साथ हमने उसके प्यारे हबीब पर यकीन किया है कि इसकी बात जो है बिल्कुल सच हमने कर लिया। मैं एक आपको बुजुर्ग किस्सा, अभी हिंदुस्तान में एक बुजुर्ग पुराना किस्सा, टाउन फैल गया, टाउन समझते हैं ना बीमारी है कैसी, कि भाई वो इन्फेक्टेड है, उसमें यह है कि बीमारी में फैलती रहती है, वो चूहों से फैलती है, और बहुत खतरनाक, पिछले ज़माने में जो ऐसा था टाउन फैलता था तो बस्ती की बस्तियाँ उड़ जाती थी, ख़त्म हो जाती थी, मर जाते थे लोग, जनाजे आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं, इस तरह होता है, बस्ती में टाउन फैल गया, और जना वो जनाजे उठ रहे हैं जा रहे हैं, वो गुठली सी निकलती है, उसका बुखार होता है, और उसके बाद वो आदमी मर जाता है, बचता नहीं उसमें, तो जनाजे उठ रहे हैं जा रहे हैं, उसमें यह है कि फिर उसमें से लोगों को निकालते हुए भाग जाओ, जिसने भागा नहीं यहाँ से भाग जाओ, निकलते हो यहाँ से, बीमारी होगी दूर चले जाओ कहीं, लोग जान बचाते हैं, सब कुछ करते हैं। अल्लाह वाला इंसान था जिसका यकीन बहुत बुलंद था, उसने पढ़ा था, अब कुरान देखें आप, कुरान के अंदर क्या चीज़ नहीं है, और कुरान किसके लिए है, हमारे लिए है, किसकी उम्मत के लिए है, नबी पाक उम्मत के लिए, मेरे लिए आपके लिए है, इतनी बड़ी चीज़ हमें दे दी जिसमें सब कुछ मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन उतने ही ज्यादा हम महरूम हैं, उतने ही ज्यादा महरूम हैं, इतने बड़े खजाने के लेने के बाद उसी कदर ज्यादा हम महरूम हैं। वजह उसकी क्या है, अल्लाह ने पहले ही बता दिया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, किस है बहुत बड़ा खजाना, किसी उम्मत को यह नहीं मिला, किसी नबी को यह नहीं मिला और ना मिल सकता है, इतना बड़ा खजाना है तो दिया गया है, किसी को ना मिलेगा ना मिला है, वो तुझे दे दिया, और अब तो माशाल्लाह हर रंग किताब मौजूद है, तर्जुमों के साथ मौजूद है, तजवीदों के साथ मौजूद है, हर घर में मौजूद है, दे दिया, तो फायदा क्यों नहीं हमें इसका, सबसे ज्यादा महरूम क्यों, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, अगर इसका फायदा वही इंसान उठा सकेगा जिसको इस पर यकीन होगा, रत्ता भर भी उसको शक हुआ उस पर, तो ये कुरान उसको फायदा नहीं देगा, न दुनिया में देगा और ना आखरत में देगा। ये तो अल्लाह ने कुरान में कह दिया पहले जी। तब वो अल्लाह वाले यकीन हो गया था, वो अपने दिलों को साफ कर दिया था और कोई मैल ही नहीं था। तो ये बात तो लोगों के दिन जाए, उनको बुखार भी हो गया, गुठली भी निकल आई, सब कुछ पेट भी पड़ गया। जब उनके पास हकीम आया, इलाज कहते मेरे पास इलाज करने के, जो मर रहे हैं उनको इलाज कर। उन्होंने कहा भाई क्या बात है, सब मरेंगे या फिर आप छोड़ें यहां से चले जाएं? कहते ना ही, मैं यहां से जाऊंगा। और यकीन देखें, अली फिल्म यह है कुरान पे यकीन, पढ़ने से नहीं आता यकीन। कहां से आता है कुरान? आप 10 कुरान पढ़ जाए यकीन नहीं आएगा। बात वही है कि जिस वक्त दिल साफ हो जाएगा तो पहली आयत पढ़े पूरा सब समझ आएगा। कुरान जबान से नहीं, कहां से पढ़ा जाता है? दिल से पढ़ा जाता है। नमाज अज्जा से नहीं, दिल से। दिल ही हर चीज है, दिल इंसान का, पूरे जिस्म को कंट्रोल इंसान का दिल करता है। और इसीलिए फरमाया अल्लाह के नबी ने, कुल शैन सकीलतन, हर चीज की जो है हमने सफाई के लिए चीज बना दी है, और सकीलतन कर जिक्रुल्लाह, चमका इसको। अल्लाह ने कहा नबी, कोई चीज छुपाए चमका इसको, किससे? अल्लाह के जिक्र से। जहां चमका सुभान अल्लाह, फिर वो 10-10 कुरान बैठ के नहीं पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह, 3-3 घंटे लग जाते हैं सिर्फ एक आयत को पढ़ने में। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, एक आयत से आगे नहीं निकलता आदमी, इतना डूब जाता है उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, कि फिर कुरान बंद करना पड़ता है या दूसरा काम भी करना है। पता है वो क्या चीज है? दिल जो साफ है। कुरान हो, कुरान से कुछ चीज जमीन आसमान में नहीं समझता। कुरान तो इतना बड़ा चीज है कि तस्वर भी इंसान नहीं कर सकता। हम अल्फ पढ़ते हैं तो जनाब सफे के सफे निकाल जाते हैं कुरान के, असर कुछ नहीं होता दिल पे। वहीं के वहीं तो पहली चीज यकीन, दिल से ही होगा तो यकीन पक्का होगा। तो उनका चले छोड़े आप, कहते नहीं जाता, मर जाएंगे, कहते मरता भी नहीं। अल्लाह अकबर, मुझे मरने की कसर है आपकी, लिखे किताब किस्सा सुना देता हूँ मैं आपको, किताब बताओ भाई। ये कहते हैं ये तो आप मर जाएंगे चंद घंटों के, मरीज ऐसे बता रहे थे ना, चंद घंटों में या दिन दिन में आप जाने वाले हैं। कहता इसमें नहीं मर सकते, मैं नहीं मरूँ, मैं आपको तो मरूंगा नहीं, जाएंगे जाता भी नहीं। हुआ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सब मर मरा के जो कुछ होना था और वो रिकवर होना शुरू हो गए, बिल्कुल सेहतमंद हो गए। हजरत ये क्या रास्ता, ये क्या, हमें तो कुछ समझ नहीं। ये बात इतनी यकीन से आपने दावा किया कि मैं मरूंगा भी नहीं और जाऊंगा भी नहीं, इसमें क्या चीज थी जो इतने ऑथेंटिक तरीके से आप ये बात कर रहे थे? कहने बात तो कुछ भी नहीं है, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं। बस एक हदीस पढ़ी थी मैंने कि अगर आप किसी बीमार के पास जा रहे हैं और बीमार को देख रहे हैं, उसके बाद ये नबी पाक जो दुआ बताई, इस दुआ को पढ़ लें आप, तो फिर आप उस बीमारी से आपको मौत नहीं आ सकती। मुझे यकीन था इस बात का, क्योंकि मैंने एक आदमी को देखा था टाउन में, तो मैंने उसके लिए दुआ पढ़ दी थी। मैं क्यों मरता, सवाल ही पैसे में मरूं? इसको कहते हैं यकीन, नहीं मरे। तो भाई जो दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई हैं, वो तो ऐसी चीज है जो कुरान के अंदर आयात आई हैं, और जिस जिस मकसद के लिए वो आई हैं, वो तो इतनी बड़ी चीज है कि हम तो महरूम ही नहीं रह सकते किसी चीज, उसमें वही असर। लेकिन एक गोली हम ले लेंगे, एक टेबलेट ले लेंगे हम पैरासीटामोल की, पैनाडोल की, उस पर तो इतना यकीन होगा, ओ गोली खा, ओ गोली खा, वो फलां दवा खा लिया आपने, दवा नहीं खाई आपने, दवा खा लिया आपने, 10-10 दफा पूछते हैं आपके, सुबह शुगर की गोली खा ली, फलां गोली खा ली, अल्लाह के खा। बस कोई ये कह दे कि तूने 7 दफा ये दवा पढ़ ली है, देखें आप शफा कैसी होती है इंसान। तो ये वजह है कि हम अपने यकीन को पक्का करें अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो वजीफा बताया है अल्लाह के जिक्र का, आप जी देखें फातिमा ज़हरा के लिए क्या कहा था, उन्होंने परेशानी बताई कि जी मैं तो ये है, मैं काम नहीं कर सकती हूँ, थक जाती हूँ, गुर्बत है, सब कुछ है, कुछ नहीं कहा, बांधी नहीं दी, नौकर नहीं दिया। फरमाया फातिमा क्यों, क्या बात है, मैं उससे बेहतर चीज़ तुझे देता हूँ, सुभान अल्लाह। और क्यों ना दें, बहुत महबूब, महबूब औलाद में सबसे महबूब नबी पाक हज़रत फातिमा ज़हरा, क्या मैं उससे महबूब चीज़ देता हूँ? हज़रत अली मौजूद थे वहाँ उसी बेड पे थे, और हज़रत आयशा भी और हज़रत फातिमा भी थी उसी बेड पे लेटे थे, हज़रत नबी हम उस बीच में जाकर बैठ गए, यानी इधर ये वो लेटे बीच में आप बैठ गए थे जाकर, और तब जाकर यह हदीस बयान फरमाई, दोनों सुन रहे हैं। कहते हैं घबराते मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज देता हूँ। उनका यकीन देखे बिल्कुल हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमें दे दें। कहा 33 दफा ये पढ़ा करो, 33 दफा ये पढ़ा करो, 34 दफा ये पढ़ो, सुबहानअल्लाह अल्लाह। इतना यकीन हो गया कि हजरत अली करम फरमाते हैं कि सबसे बड़ी सख्त रात मेरे पे गुजरी उस जंग में, जंग फैन थी या कौन सी जंग थी, जंग जमल तो याद मुझे, कहते सबसे सख्त रात थी मेरी, सबसे सख्त रात थी, तो मैंने उस रात भी चुंग होते थुमसान की जंग थी, अंधेरा घुप था यानी आदमी को अपना होश नहीं था, फिर सबसे सख्त था मेरे लिए, हजरत अली फरमाते हैं, लेकिन उस रात भी मैंने आपका बताया हुआ वजीफा नहीं छोड़ा। समझे मेरी बात, तो आप क्या जिक्र करना चाहिए, नहीं आएंगे सुबह पता चलेगा सुबह किसको, क्यों आपका फायदा है भाई। एक दिन जरा आपको तकलीफ होगी, दो दिन तकलीफ होगी, अल्हम्दुलिल्लाह तो मैंने एक सवाब बताया अल्लाह का जिक्र करो, कि तो एक सवाब बताया कि कोई ऐसी बात नहीं है इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह दीन और दुनिया दोनों प्रोटेक्शन इंसान को मिलते हैं, सिर्फ नफ्स को मानना पड़ता है। अल्लाह ताला ने कहा है ना कि थोड़ी सी तो मुजाहदा कर, थोड़ी सी तो तकलीफ बर्दाश्त कर, चले हम इस नीयत से आएंगे, अब देखें इसमें कितना स्वाब है कि हम बैठ के जब वहाँ जिक्र करेंगे, जिक्र के बाद हमें ये स्वाब मिल जाएगा, और जो मिल गया अल्लाह की फजल से, कल जुम्मा है अल्लाह की फजल से स्वाब मिल गया, लेकिन आप ये देखें इस स्वाब की नीयत से हमें और क्या मिलेगा, हम नमाज से जमात से नमाज भी पढ़ लेंगे। देखिए ये चीज़ ले आएगी ना उधर कि चलो यार जमात भी मिली वो भी पढ़ लेते, तो डबल स्वाब, जमात भी मिली, और जो जमात का छोड़ना तो एक बहुत बड़ा अजाब है, इससे बड़ा तो अजाब ही कोई नहीं हो सकता, उस अजाब से निकाला आपको अल्लाह ने। देखिए आप कितने बड़े अजाब में इंसान जो सुबह उठ के नमाज फजर पर नहीं आता, उससे बड़ा तो कोई अजाब ही नहीं है, जानबूझ के जमात को छोड़ता है, उससे बड़ा कोई अजाब नहीं है। उसके अजाब तो तशरीह की है नहीं बस, कि जो जानबूझ के या किसी भी दुनियाई मजबूरी की वजह से या किसी भी वजह से जिसमें शरीर में कोई गुंजाइश नहीं है, और वो बैठा रहता है अपने कारोबार पे, अपने घर में, किसी जगह, और जमात जा रही होती है, मस्जिद में नहीं जाता, तो क्या इरशाद फरमाया, फरमाया कि मेरा दिल करता है कि मैं अपनी जगह किसी को ठहराऊं, बच्चों को पकड़ूं और लकड़ियां जमा करूं, उस घर को आग लगा दूं, ये रहमतुल्लिल आलमीन की जबान से आवाज निकले, उस कारोबार का क्या हाल होगा, उस घर का क्या हाल होगा, उस दुकान का क्या हाल होगा, उस बस्ती का क्या हाल होगा, मुझे बताएं कौन सी चीज बचा सकती है जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं इस घर को जला दूं, वो जलती नजर नहीं आएगी, खुदा की कसम वो जल गई है, वो तबाह हो गई, एक नमाज के पीछे उसने जान की नमाज को छोड़ दिया, नफ्स पे आकर, दुनिया के नफ्स पे आकर उसने मस्जिद का रुख छोड़ा है, मस्जिद को छोड़ा है उसने, बेशक कुछ खुश रहे अपने हाल में कि मैं, लेकिन वो उस ये एक्शन उसने लिया, और उस एक्शन का ये अजाब है ये हो गया, और जिस वजह से उसने छोड़ा, कारोबार की वजह से छोड़ा, दुकान की वजह से छोड़ा, या किसी भी वजह से उसने छोड़ा सिवाय उसके जो शरी उजर है, वल्लाह इसमें कोई शक कर ही नहीं सकता इस चीज में कि उसके घर बार में, सब उसी घर में दुकान में आग लग चुकी है, चाहे कितना उसको नजर आए कि मेरा फैल रहा है, वो फैल नहीं रहा, वो आग लग गई है उसके अंदर, बच्चे जल गए हैं उसके अंदर, वो जड़ गया सब कुछ, इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। तो इतने बड़े अजाब से बचाया अल्लाह पाक ने, ये नहीं बचाया, बचाया ये नमाज के लिए भी आ गया, फिर जिक्र भी कर लिया, सेहतमंद भी हो गया, किसी भी वजन की जरूरत नहीं, एक्सरसाइज की जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मूवमेंट की जरूरत नहीं, बस बैठ के झुक के कहा गया अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरी तारीफ सब तू ही बड़ा, तेरी तारीफ सब कुछ तू ही है, और क्या कहा, सब कुछ तू ही है मेरा मौला, तू ही सब कुछ कर सकता है, बस उसको याद किया, अल्लाह ने कहा जाओ मैंने सब कुछ तुम्हें अता कर दिया। हाँ जाइए भैया, नहीं इंशाल्लाह सुबह कहें जोर से, इंशाल्लाह सुबह आएंगे, और इसमें सुस्ती नहीं करनी, यही चीज़ें हैं, हम जमा इसलिए होते हैं, हमें चांस देता है, हम एक दूसरे को तकलीफ देते हैं, यही हदीसें कई बार हम सुन चुके होंगे, उलमा कराम बताते हैं, इन्हीं को हम रिपीट करते हैं, फिर हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, क्योंकि हमारा मशीन ऐसी है ना, बाहर जाएंगे शैतान आ जाएगा, नफ्स आएगा, दोस्त आएगा, तो फिर सुने, इसको रिपीट करते रहें अपने जहन में, और आज सुना है उसको ताज़ा रखें, जाने ना दें, निकले ना दिल से, समझे दिल खराब, निकलने ना दें बिल्कुल नहीं, सुबह तक इसको ऐसे ग्रिप करके रखें, बिस्तर से एकदम जम मार के उठें, फजर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आए, आके बैठें, अल्लाह का जिक्र करें, जिक्र करें, इशाक पढ़ें, अल्लाह को आप खुद देखेंगे जिंदगी में फर्क आ गया आपकी, सुनने में मजा आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह سننے میں مزہ آ رہا ہے اور اس کو تو بشارت مل رہی ہے, ساتھی کے مزدوک سمجھ کہ صبح جب چلتا پھرتا آپ کو نظر آئے نا تو آپ سمجھ جانا یہ دوزخ سے آزاد ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ میں اس حالت میں موت تو آنی ہے, اسی حالت موت ہے کہ جب ہم صبح کا ذکر کر رہے ہوں آرام سے سب گناہوں سے معافی کر لی ہو, سب کچھ ختم ہو گیا ہو, اللہ ہمیں معاف فرما دے. کرنا چاہیے, آئیں گے صبح انشاءاللہ.